जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे नंद राधा गोकुला नंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नितय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौरा हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिस्टिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामयी की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंध जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवान के बारे में स्पष्ट ज्ञान होना और एकमत होना ये वैदिक सभ्यता में भी इतना प्रचलित नहीं था। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण या नारायण को सभी तो मानते थे, फिर भी तरह तरह के मनोवृत्तियों के लोग हुआ करते थे। आजकल हम देखते हैं कि कोई लोग कहते हैं कि हम तो इस भगवान को मानते हैं, हम उस देवता को परम मानते हैं, हम देवी को मानते हैं, हम गणेश को मानते हैं, ऐसे तरह तरह के भिन्न मत होते हैं। एक मत नहीं हो पाता, सब अपने अपने मत में निष्ठावान रहते हैं। और कोई ऐसे हैं, बल्कि अधिकतर लोग ऐसे हैं जिनको स्पष्ट पता नहीं होता कि ये हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, या सभी एक साथ हैं। तो ये जो विडंबना अब है, ये पहले भी हुआ करता था। वैष्णवों की संख्या अवश्य पहले के जमाने में अधिक थी, परंतु फिर भी ऐसे अनेक लोग हुआ करते थे जो वैष्णव नहीं थे। जैसे जब शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, उस समय न केवल पृथ्वीलोक से बल्कि ब्रह्मांड के कोने कोने से अनेक ऋषि मुनि आदि सब वहां पर आए। वो सब शुकदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुनना चाहते थे। खबर तो एक दावानल की तरह फैल गई कि राजा परीक्षित को श्राप मिला है, केवल 7 दिन का समय बचा है और उन्होंने अपना राज्य आदि सब त्याग कर दिया है, और त्याग करके वो गंगा के तट पर बैठे हैं, अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और वो कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। तो राजा परीक्षित ने भी जब उस समय प्रश्न किए कि मृत्यु पे खड़े हुए व्यक्ति, मृत्यु के द्वार पे खड़े हुए व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, किन का स्मरण करना चाहिए, किन के बारे में श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को किसकी उपासना करनी चाहिए, जब शुकदेव गोस्वामी ने ये प्रश्न उपस्थित ऋषि मुनियों से किए, तो उनको भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तर मिल गए। क्योंकि नानाविध प्रकार के वृत्तियों वाले ऋषि मुनि वहां थे, तो अपने अपने मतानुसार उन्होंने प्रश्न के उत्तर दिए, और परीक्षित महाराज को पता नहीं चला कि सही उत्तर कौन सा है। एक ऋषि ऐसा बोल रहे हैं, दूसरे ऋषि वैसा बोल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो उस समय शुकदेव गोस्वामी वहां पर पधारे, और शुकदेव गोस्वामी के प्रवेश करने से ही सभी उपस्थित ऋषि मुनिगण समझ गए कि यही योग्य और सही व्यक्ति है जो कि स्पष्ट रूपेण बता पाएगा कि परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर क्या है। फिर सुखदेव गोस्वामी वहां बैठे, उन्होंने तो स्पष्ट उत्तर दे दिया। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छताभयम् तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि ही। तो उन्होंने स्पष्ट कह दी कि भगवान ईश्वर श्री हरि है, श्री कृष्ण है, और उनके बारे में स्मरण करना, कीर्तन करना, श्रवण करना, उनकी उपासना करना, ये हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। और विशेष करके जो मृत्यु के द्वार पे खड़े होकर भयभीत हो गया है, उसके लिए साधारणतः हर एक व्यक्ति जो मृत्युशैया पे लेटा हुआ होता है या जो मृत्यु का सामना करता है वो डर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को विशेष करके श्री कृष्ण के बारे में श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी तो परम वैष्णव थे, उन्होंने तो स्पष्ट उत्तर दे दिया, परंतु उन्होंने ये भी देखा कि परीक्षित महाराज के अलावा और बहुत सारे लोग यहां पर हैं। परीक्षित महाराज भी स्वयं एक शुद्ध भक्त थे भगवान के, बल्कि उन्होंने अपने मां के गर्भ में रहते हुए भी भगवान कृष्ण का दर्शन किया था। उनकी रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनकी माता उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए थे और घूम रहे थे। तो उस समय तो भ्रूण के रूप में थे, तो वो देख रहे थे कि ये चतुर्भुज रूप जो बहुत प्रकाशमान है, ये मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, तो बहुत आकर्षित हुए। तो परीक्षित महाराज स्वयं शुद्ध भक्त थे, परमहंस वैष्णव थे, जिन्होंने मां के गर्भ में स्थित होकर भगवान का दर्शन किया था, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने उनको सीधे सीधे बता दिया कृष्ण भक्ति के बारे में। इधर उधर की बातें क्यों करना। ऐसे देखा जाता है कि जब हम लोग बाहर प्रचार करने जाते हैं, कई बार तरह तरह के श्रोता होते हैं, और कभी कभी इतना स्पष्ट हम बात नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लोग नाराज हो जाएंगे। वैसे एक देश है सिंगापुर, आप जानते हैं, तो पहले वहां पे भारत से 2-3 पीढ़ियों पहले या 4 पीढ़ियों पहले भारत से गए हुए लोग बहुत हैं जो बसे हुए हैं वहां पे, विशेष करके दक्षिण भारत से, और उनके मंदिर आदि बहुत सारे हैं वहां पे, विभिन्न देवताओं के मंदिर, देवियों के मंदिर बहुत सारे हैं। तो जब हमारे संस्था के भक्त पहले वहां गए, करीब करीब 35-40 साल पहले, तो उन्होंने बहुत जोरदार प्रचार करना शुरू किया कि देवी देवता परम नहीं है, कृष्ण ही परम है, देवी देवताओं की उपासना बंद कर, वो भी देवताओं के मंदिर में बैठकर। और वो ऐसे लोगों को प्रचार कर रहे थे जो कि उनके उपासक थे, इसके अलावा उन्होंने कुछ सुना नहीं था, कुछ जानते नहीं थे। तो इतना जोरदार प्रचार करने के कारण वहां के हिंदू समाज में चहल पहल मच गया, और आखिर उन्होंने वहां के सरकार के ऊपर दबाव डाला कि ये लोग सही हिंदू नहीं है, इनको यहां आना मना कर दीजिए, और वैसे ही हुआ। और आज तक भी प्रवेश मना है हमारे संस्था के भक्तों को वहां उस देश में, क्योंकि उन्होंने देश काल पात्र के अनुसार सोचा नहीं। हां, कृष्ण परम सत्य है, परंतु श्री कृष्ण सत्य है ये किस तरह से बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, किस मात्रा में कहना चाहिए, किस तरह से इस ज्ञान को प्रस्तुत करना चाहिए, ये उन्होंने इसके बारे में सोचा समझा ठीक से नहीं। एक बार हम अभी विदेश में गए थे, तो हमको एक कंपनी में बुलाया प्रवचन देने के लिए। लेकिन उन्होंने पहले कहा आप कृष्ण का नाम नहीं लेना है, आपको भगवान शब्द नहीं कहना है आपको। अरे फिर क्या बोलेंगे हम, क्या भगवान नहीं बोलेंगे, कृष्ण नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे। तो फिर भी हमने सोचा कि कम से कम एक जाने का मौका मिल रहा है, कुछ तो कहने का मौका मिल रहा है, वो देखेंगे तो सही और कुछ तो सुनेंगे इधर उधर से, कुछ फिर बाद में जो रुचि लगते हैं वो बाद में आएंगे। वो जानते हैं हम हरे कृष्ण वाले हैं, फिर भी बुला रहे हैं। तो वे क्यों कह रहे थे कि भगवान आदि नहीं कहना, क्योंकि वहां ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ये भगवान शब्द से नफरत है। वो नास्तिक है, वो कहते हैं कि ठीक है हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन हमारे व्यापार को कैसे अच्छी तरह से बढ़ाएं, ये हमारे आधुनिक जीवन में कैसे शांतिपूर्वक हम रहें, मानसिक तनाव से रहित, ऐसा कुछ बताएं तो हम सुनने के लिए तैयार। तो फिर ऐसा ही कुछ घुमा फिरा के कुछ बातें करनी पड़ी। फिर उसके बाद कई लोग आए कि आप कहाँ से हैं और किताब क्या, हम भी पढ़ना चाहते हैं भगवद गीता। तो धीरे धीरे से ऐसे लोग आते हैं। तो कई बार ऐसे भी कहना पड़ता है जब हम देखते हैं कि सामने वाले कृष्ण भक्त नहीं है और कृष्ण के बारे में सुनना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ राधा गोकुलानंद मंदिर में, ये तो कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण भक्त ही इकट्ठे हुए हैं, तो हम सब स्पष्ट कहते हैं, जैसे शास्त्र में है वैसे ही हम कहते हैं। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि परीक्षित महाराज तो परम वैष्णव हैं, परंतु और यहां कितने सारे ऋषि मुनि हैं, वो सब वैष्णव नहीं है, थोड़े वैरागी हैं, तपस्वी हैं, शाक्त हैं, शैव हैं, कर्मकांडी हैं, ज्ञान योगी, अष्टांग योगी, तरह तरह के लोग यहां पे बैठे हुए हैं, थोड़े बहुत वैष्णव भी होंगे। तो सुखदेव गोस्वामी ने इतनी बुद्धिमत्ता से भागवत की कथा प्रस्तुत की जिससे कि इस समस्त प्रकार के जो लोग वहां इकट्ठे हुए थे वो सब भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो गए। आगे चल के वो अवश्य सब भक्त बने होंगे सुखदेव गोस्वामी की कृपा से। उसी तरह से सूत गोस्वामी ने जब नैमिषारण्य में एकत्र हुए ऋषियों को भागवत की कथा सुनाई तो उन्होंने भी यही देखा कि ये सब कर्मकांड में लगे हुए लोग थे, अब इनको कृष्ण के बारे में सुनाना है। थोड़े भक्त भी थे उनमें से, लेकिन जिज्ञासु थे। तो सूत गोस्वामी ने भी यही भागवत उस तरह से सुनाई। कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया के इतिहास में ऐसे देखा गया है कि आध्यात्मिक विषयों के प्रति और भगवत ज्ञान के संबंध में भिन्न मत रखने वाले लोग हमेशा रहे हैं। तो एक बार ऐसे ही एक समारोह हुआ था जिसमें अनेक ऋषि मुनि एकत्र हुए थे सरस्वती नदी के तट पर, और इस घटना का वर्णन है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय क्रमांक 89 में। तो इस अध्याय में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ऐसे ऋषि मुनि बैठे थे और वो इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे थे कि परम सत्य कौन है। वैष्णव जो होते हैं वो परम सत्य को अच्छी तरह से पहचानते हैं, इसलिए वैष्णवों की तुलना एक हंस पक्षी से की जाती है। हंस की विशेषता ये होती है कि दूध और पानी के मिश्रण से वो केवल दूध निकालते हैं, ऐसे कहा जाता है ऐसे पंछियों के बारे में। तो ठीक उसी प्रकार से जो वैष्णव होते हैं, जो भी इस सृष्टि में रहते हैं, माया जाल से के अधीन नहीं आ जाते और यह भौतिक जगत में रहते हुए भी भली भांति समझ लेते हैं कि यह सृष्टि का सार भगवान श्री कृष्ण है। यदि विश्लेषण किया जाए इस दुनिया का, यहाँ प्रकृति है, निसर्ग है, लोग हैं, घटनाएं हैं, आसमान है, ब्रह्मांड है, सब चीजों को देख के परीक्षा करके बुद्धिमान व्यक्ति इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि इन सब का आधार, इन सब की बुनियाद, इन सब का सार भगवान श्री कृष्ण है। जो तो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं ऐसी बात को समझते हैं, इसलिए दुनिया में वो ऐसे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं जो कि श्री कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल किए जा सके, वर्जित चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं। और फिर वो जानते हैं कि जितने भी चीजें यह उपलब्ध हैं, भले हमारा शरीर हो, हमारा धन हो, ये पेड़ पौधे हो, ये सब कुछ हो, ये भगवान कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। इसलिए वो सार ग्राही कहलाते हैं। ये सृष्टि का सार क्या है? श्री कृष्ण। लेकिन ऐसे लोग होते हैं जो हंस के समान नहीं होते हैं, जो भक्त नहीं होते हैं, तो वो दूध और पानी के मिश्रण को देख के पानी निकाल लेंगे, दूध नहीं पिएंगे, उसमें से पानी निकालेंगे। दूसरे शब्दों में जो अभक्त होते हैं वो इस सृष्टि का की जांच करना चाहते हैं, परंतु इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते कि श्री कृष्ण है। वो ऐसे किसी न किसी गलत निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि भगवान है ही नहीं, प्रकृति ही शाश्वत है, प्रकृति का कोई कारण नहीं है, प्रकृति के पीछे कोई व्यक्ति, कोई भगवान ऐसे नहीं है, और है भी तो केवल एक ज्योति या प्रकाश है, निराकार कोई है। तो ऐसे सब भिन्न भिन्न धारणाओं के लोग रहते हैं, क्योंकि वो सारग्राही नहीं है। वैष्णव सारग्राही होते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी, राजा परीक्षित ऐसे सारग्राही वैष्णव थे। तो ऐसे सारग्राही वैष्णवों में जब चर्चा होती है कृष्ण के बारे में होती है, और फिर जो कृष्ण कथा का मंथन होता है उसमें से बहुत अच्छी तरह से भगवान कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। तो यहां पे सरस्वती नदी के तट पे लोग बैठे थे, ऋषि मुनिगण बैठे थे, और मंथन तो कर रहे थे वो, लेकिन गलत ढंग से कर रहे थे। उनको पता नहीं था ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, विष्णु श्रेष्ठ हैं, या शिव जी श्रेष्ठ हैं। ये प्रश्न उनके सामने आया। तो किसी एक ऋषि ने प्रश्न किया सबको कि मेरे मन में ये समस्या है कि आप इसका स्पष्टीकरण कीजिए। तो थोड़े ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा हमारे मत में तो शिव जी परम हैं। तो थोड़े ऋषियों ने कहा हमारी राय तो ऐसी है कि ब्रह्मा जी परम है क्योंकि वो सृष्टि करता है। और कई ऋषियों ने कहा नहीं नहीं, सत्य तो ये है कि भगवान विष्णु ही परम सत्य है। तो ऐसे तीन मत हो गए। अब तीन, वैसे सही उत्तर किसका है, कौन सा है, तो कैसे जान लिया जाए? तो फिर इन ऋषियों ने भृगु मुनि नाम के एक ऋषि को नियुक्त कर दिया। भृगु मुनि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और उनके वंशज भार्गव नाम से जाने जाते हैं। ऐसे कई गोत्र होते हैं ना, आप जानते हैं तरह तरह के गोत्र, गौतम गोत्र, कौशिक गोत्र, ये सब ऋषि मुनियों से आते हैं, इसलिए इनके पीछे एक गोत्र का नाम है। तो भृगु मुनि बहुत बड़े ब्राह्मण थे, बहुत बड़े ऋषि थे, तेजस्वी शक्तिशाली। तो इनको नियुक्त किया गया कि आप जाके तीनों के पास जाना, ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी के पास जाके देखो कि इनमें से, इन तीनों में से किन के चरित्र में सत्व का सबसे अधिक प्राधान्य है, सबसे अधिक सत्व गुण में कौन स्थित है। क्योंकि जो व्यक्ति सत्व गुण में स्थित है तो उसके अंदर सहनशीलता, समभाव और ऐसे अनेक अच्छे अच्छे गुण रहते हैं। लेकिन जो सात्विक नहीं होते हैं उनके चरित्र में दुर्गुण अनेक आ जाते हैं। तो ऋषि मुनियों ने भृगु मुनि से कहा कि ये परीक्षा आप कीजिए सात्विकता की, तीनों की। तो भृगु मुनि ने कहा, शिरोधारी, ठीक है, आप जैसा आदेश देते हैं वैसे हम करेंगे। हम ये ढूंढ निकालेंगे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी में से श्रेष्ठ कौन है। तो सर्वप्रथम वो गए ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी उनके पिता हैं और वैदिक सभ्यता के अनुसार जब एक पिता के पास पुत्र जाता है तो पुत्र को पिता का सम्मान करना चाहिए, विशेष करके जब काफी समय के बाद दोनों मिल रहे हैं तो पैर छूने चाहिए या किसी न किसी प्रकार से कम सम्मान तो देना चाहिए। तो भृगु मुनि तो एक विचार करके गए थे कि मैं जानबूझ के सम्मान नहीं करूंगा, फिर देखता हूं प्रतिकार कैसे करेंगे, इनका फिर क्या बर्ताव होगा। तो परीक्षा के उद्देश्य से वो गए थे, फिर हम देख लेते हैं कि तीनों का बर्ताव कैसे होता है, फिर हम अनुमान लगा सकते हैं कि सात्विकता तीनों में से किसकी अधिक है। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी अपनी सभा में बैठे थे। जैसे ही भृगु मुनि ने प्रवेश किया, ब्रह्मा जी के सामने जाके प्रणाम आदि नहीं किया, कोई मीठे शब्द आदि जाके नहीं बोले, सीधे जाके आसन ग्रहण करके बैठ गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे, ये मेरे पुत्र है और बहुत समय के बाद मिल रहे हैं और ऐसे मर्यादा व्यतिक्रमण कर रहे हैं, ये तो बहुत घमंड हो गया है मेरे पुत्र के अंदर, ऐसे आके सीधा यहां बैठ रहा है, सम्मान नहीं, दो शब्द नहीं। ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा क्रोध आया, थोड़ा नहीं, काफी आया क्रोध। वैसे आप तो जानते हैं कि ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान विष्णु, ये तीन अधिष्ठाता देव हैं प्रकृति के तीन गुणों के। ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठाता देव हैं, शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता देव हैं और भगवान विष्णु सत्वगुण के अधिष्ठाता देव हैं। तो ये तीन गुणों के द्वारा ये सारी दुनिया चल रही है और ये तीन प्रमुख देव हैं इस सृष्टि के भीतर। तो क्योंकि ब्रह्मा जी रजोगुण का स्पर्श करते हैं, वो अधिष्ठाता देव जो है रजोगुण के, तो कभी कभी वो रजोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। और आप तो जानते हैं कि क्रोध ये रजोगुण से उत्पन्न होता है और जब व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, हम सबका अनुभव है क्या हो जाता है, जब हमें क्रोध आता है हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो अक्सर दुनिया में हम लोगों को क्रोध आता है जब हमारी अहंकार को कोई चोट पहुंचती है, तो कोई ऐसे कटु वचन कह देता है या ऐसे कोई कार्य करता है या नहीं करता है जो कि एक तीर के समान आके हमारे अहंकार को चुभ लेता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। कभी कभी एक कांटा हमारी उंगली में चुभ जाता है तो हमें बहुत लगता है, या जब हम परिक्रमा आदि कर रहे होते हैं गोवर्धन की, तो कभी कभी कांटे चुभ जाते हैं पैरों के तलवों में, दर्द होता है। लेकिन ये दर्द तो बहुत मामूली दर्द होता है, कटु वचनों के द्वारा, कटु व्यवहार के द्वारा जो तीर चलती है, वो तीर जब हमारे अहंकार को लगती है तो जो दर्द उस समय होता है वो तो बहुत गहरा होता है। इसलिए साधारण व्यक्ति सहन नहीं कर पाता, अरे मुझे सम्मान मिलना चाहिए था, इस व्यक्ति ने मुझे सम्मान क्यों नहीं दिया और इसने मेरे प्रति ऐसे क्यों कहा, मुझे श्रेय मिलना चाहिए था लेकिन दूसरे व्यक्ति को क्यों श्रेय मिल गया। तो ऐसे भावनाएं जो आती हैं, और क्योंकि व्यक्ति सम्मान चाहता है, श्रेय चाहता है, यश आदि चाहता है, तो ऐसे कोई बात कोई कह देता है या कोई बर्ताव कर लेता है तो अहंकार को बहुत चोट पहुंचती है और हम तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। अक्सर ऐसे होता है, हनुमान जी का क्रोध, अर्जुन का क्रोध, वो इस दुनिया के क्रोध से भिन्न है। हनुमान जी ने क्रोध किया श्री रामचंद्र की सेवा के लिए, अपने अहंकार के लिए नहीं। हनुमान जी ये साबित नहीं करके दिखाना चाहते थे कि देखो मैं कितना शक्तिशाली हूं, और वास्तव में हनुमान इतने शक्तिशाली थे कि अकेले ही वो सारे रावण के सेना को परास्त कर सकते थे, वो सक्षम थे। लंका जलाने के बाद भी जब इंद्रजीत उनके सामने आए ब्रह्मपाश लेकर, स्वेच्छा से वो पकड़े गए। यदि वो चाहते तो ब्रह्मास्त्र, ये जो ब्रह्मपाश जो है उनको पकड़ने में सफल नहीं होता, परंतु ब्रह्मा जी के शब्दों का मान करना चाहते थे क्योंकि ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था, ये वरदान दिया था इंद्रजीत को, तो वो पकड़े गए। तो हनुमान जी ने जो भी कार्य किया वो भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री रामचंद्र की सेवा के लिए किया, अपने अहंकार के लिए नहीं, अपने प्रसिद्धि के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, भोग के लिए नहीं किया उन्होंने। ठीक उसी तरह अर्जुन ने क्रोध किया युद्ध भूमि पर, परंतु अपने अहंकार के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, केवल श्री कृष्ण ने आदेश दिया है इसलिए उन्होंने किया। भगवान श्री कृष्ण की सेवा थी क्रोध करना अर्जुन के लिए, क्योंकि क्रोध किए बिना व्यक्ति युद्ध नहीं कर सकता है। लेकिन साधारण तौर से इस दुनिया में जो क्रोध देखा जाता है वो इस तरह का क्रोध नहीं होता। तो हर बार क्रोध बुरा नहीं होता, परंतु जब क्रोध गलत चीज के लिए प्रयोग किया जाता है तब उससे बहुत हानि होती है, और ऐसा क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होता है, उससे व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और यदि भक्ति की व्यक्ति की बुद्धि इतनी तीव्र और तेज और शुद्ध न हो तो वो ऐसे प्रज्वलित रूप से जलने वाले भयंकर अग्नि का शिकार बन सकता है, वो भी स्वयं जल जाएगा, दूसरों को भी जला डालेगा। आपने देखा होगा और सुना होगा कि व्यक्ति जब क्रोधित हो जाता है तो क्या नहीं करता है, क्रोध में आके भला बुरा अपने निकट के लोगों से भी कह देता है, कभी कभी अपने निकट के लोगों को जान से भी मार डालता है। ऐसे होता है दुनिया में, क्रोध ऐसी भयंकर चीज है। तो ब्रह्मा जी रजगुण का स्पर्श करते हैं इसलिए उनको क्रोध तो आया, परंतु ब्रह्मा जी तो हम जैसे साधारण व्यक्ति नहीं है, वो आदि कवि हैं। आदि कवि अर्थात इस ब्रह्मांड के सबसे पहले दार्शनिक हैं वो। कवि शब्द का अर्थ दार्शनिक भी होता है, न केवल ऐसा व्यक्ति जो कविता लिखता है, वो कविता तो लिखते ही हैं ब्रह्मा जी, परंतु कवि शब्द का तात्पर्य दार्शनिक भी होता है, फिलोसोफर। तो ब्रह्मा जी इतने बुद्धिमान हैं, उनकी बुद्धि इतनी गहरी है, इतना विशाल है, इतना ज्ञान है ब्रह्मा जी को, स्वयं भगवान के वो शिष्य, प्रथम शिष्य थे, प्रथम उपदेश वैदिक ज्ञान का भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपनी तीव्र बुद्धि का प्रयोग किया और अपने क्रोध को वश में कर लिया, क्रोध को प्रकट होने नहीं दिया। जब क्रोध प्रकट होता है वैसे शारीरिक लक्षणों से पता चल जाता है, भले हम क्रोध को दबा के भी रख रहे हों लेकिन सामने वाला अक्सर पहचान जाता है कि ये व्यक्ति गुस्सा हो गया है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने अन्य जो पुत्र हैं चतुष्कुमार, जो ब्रह्मचारी थे, उनको आदेश दिया कि अभी आप गृहस्थ बनो, विवाह करो। तो चतुष्कुमारों ने उत्तर दिया कि हम ब्रह्मचारी ही रहना चाहते हैं, हम विवाह नहीं करना चाहते हैं। वैसे ये एक ही आदेश है पिता का, जो पुत्र नहीं माने तो चलता है, शास्त्रों में ऐसे कहा गया है, लेकिन वो भगवान के लिए होना चाहिए और किसी कारण से नहीं। अन्यथा अपने माता पिता का के आदेश का पालन नहीं करना ये अच्छा नहीं माना जाता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति चतुष्कुमार जैसे किया वैसे करना चाहता है तो वो पाप नहीं है। तो ब्रह्मा जी इस बात को जानते थे, बड़े पंडित हैं, ब्राह्मण हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मांड के सबसे पहले ब्राह्मण, फिर भी पिता भी है, गृहस्थ है। तो उनको गुस्सा आ गया, अरे मैंने इनको आदेश दिया और आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। तो गुस्सा आया तो सही, लेकिन फिर से उन्होंने गुस्से को दबा दिया लेकिन आंखों से गुस्सा दिखाई पड़ रहा था, उनके आंख थोड़े बड़े हो गए थे। सबसे पहली बात जो हम देखते हैं जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है, उसकी आंखों को देखिए, पता चलेगा ये व्यक्ति गुस्सा हो गया है। बाकी बातें सब बाद में आएंगी। तो चतुष्कुमारों ने देखा कि आंखें हमारे पिता के अभी क्रोध दिखा रही हैं, लेकिन ब्रह्मा जी आदि कवि हैं तो उन्होंने क्रोध को दबा दिया। लेकिन क्रोध अंदर दब गया, लेकिन उनके भ्रुकुटी के बीच में से जो आंखों के बीच का जगह है उसमें से वो क्रोध निकल आया। किस रूप में? रुद्र के रूप में शिव जी प्रकट हुए। इसलिए यद्यपि शिव जी का स्थान ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न हुए तो वो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं ब्रह्मांड के भीतर। तो खैर, इस घटना में जब भृगु मुनि उनके पास आए और भृगु मुनि ने ब्रह्मा जी का सम्मान ठीक से नहीं किया तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया। लेकिन उनकी विशाल बुद्धि है, इसलिए अपने क्रोध को वो दबा के रख पाए, दबाने में सक्षम हुए, क्रोध को दबा दिया, कुछ कहा नहीं। परंतु भृगु मुनि बड़े बुद्धिमान थे, वो समझ गए कि मेरे पिता को गुस्सा आया तो ये परम नहीं हो सकते। तो अब उन्होंने अपने मन से ही अपराध किया, मानसिक अपराध, शरीर से कुछ ऐसे किया नहीं उन्होंने अपराध करने के लिए, केवल मन में उन्होंने अपराध किया। लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंचे, ये परम सत्य नहीं हो सकते। तो फिर वो चले गए ब्रह्मलोक से, वो कैलाश गए, कैलाश पर्वत। वहां पे शिवजी अपनी पत्नी दुर्गा देवी के साथ में बैठे हुए थे। भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो भृगु मुनि और शिव जी भाई हुए। तो शिव जी ने दूर से देखा कि अरे भृगु मुनि मेरे भाई आ रहे हैं, तो बड़े आनंद से उठे अपने स्थान से और आलिंगन करने गए भृगु मुनि को। अब ऐसे वैदिक सभ्यता के अनुसार जब कोई कनिष्ठ व्यक्ति किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मिलता है तो उसे पैर छूने चाहिए वरिष्ठ के, या कम से कम नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और जो वरिष्ठ होते हैं उनको चाहिए कि जो कनिष्ठ हैं उनके प्रति वो प्रेम प्रदान करें, प्रेम का बर्ताव करें। तो शिव जी ने सोचा कि चलो ये मेरे भाई आए हैं तो आलिंगन करके मेरा प्रेम व्यक्त करूं। तो भृगु मुनि ने अपनी योजना बनाई थी, तो अपने बनाए हुए योजना के अनुसार शिव जी का प्रेम स्वीकार नहीं किया जानबूझ के, क्योंकि वो तो परीक्षा करने आए थे ना। तो जैसे ही शिव जी सामने आए, हाथ सामने करके कि अरे मेरे भाई आओ आओ, तो भृगु मुनि कहने लगे, छी छी छी, मुझे छुओ नहीं, छुओ नहीं, तुम दूर रहो, तुम असी उत्पथगाह, त्वम असि आप हो उत्पथ गाह, ऐसे पथ में चलने वाले जिसमें आप धार्मिक सिद्धांतों का या धर्म के पथ का उल्लंघन करते हो, आप साफ सुथरे नहीं रहते हो। कहने का तात्पर्य यह था कि शिव जी स्मशान भूमि के रज का लेप अपने शरीर पर लगाते हैं, सांप उनके गर्दन में गले में रहते हैं और वो हमेशा स्मशान भूमि में रहते हैं, उनके साथ में भूत प्रेत पिशाच घूमते फिरते हैं, तो हैं तो बहुत महान शिव जी। शिव जी का स्थान इतना महान है कि इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। हमें शिव जी का ब्रह्मा जी का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, ये हमें याद रखना चाहिए। ये बहुत महान है अपने अपने स्थान में। ये तीनों ही शिव जी ब्रह्मा जी और विष्णु जी ये गुण अवतार हैं भगवान के। गुण अवतार अर्थात तीनों गुणों के अधिष्ठाता देव हैं। तो खैर जब शिव जी का व्यवहार कोई अज्ञानी व्यक्ति देखता है वो निंदा करता है। भृगुमुनि अच्छी तरह से जानते थे कि उनके भाई कितने महान हैं, परंतु क्योंकि वो एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आए थे, जानबूझकर उन्होंने शिव जी का अपमान किया। ब्रह्मा जी का अपमान केवल मन से हुआ था भृगुमुनि के द्वारा, अब शिव जी का अपमान जब किया भृगुमुनि ने तो अपने वचनों के द्वारा किया। छी 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 आओ नहीं, तुम बहुत आप धर्म के विरुद्ध के पद विरुद्ध चलते हो, इसलिए मैं आपको आलिंगन नहीं कर सकता। तो अपने वचनों से उन्होंने अपमानित किया शिव जी को, ये भी बहुत बड़ा अपराध हो गया। मन से अपराध करने से भी गहरा अपराध माना जाता है जब हम अपने वचनों से अपराध करते हैं। तो शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता देव है और कभी कभी तमोगुण के प्रभाव से भी प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि स्पर्श करते हैं वो। तो भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण और शिव जी में ये अंतर है। ब्रह्मा जी भी यही बताते हैं ब्रह्म संहिता में, क्षीरम यथा दधिविकार विशेष योगात संजायते नहि ततः पृथक अस्ति हेतोः, यह शंभुताम अपि ततः पृथक अस्ति हेतोः गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कि शंभु कौन है और भगवान कृष्ण या विष्णु कौन है? जब भगवान कृष्ण जो दूध के समान है वो भौतिक सृष्टि का संपर्क करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वो शिव जी कहलाते हैं। तो शिव जी हैं बहुत महान, परंतु भगवान कृष्ण या विष्णु की श्रेणी में नहीं है, थोड़े निम्न श्रेणी में है, क्योंकि वो स्पर्श करते हैं तीन गुणों का। तो उनको आया भयंकर गुस्सा और शिव जी का क्रोध तो आप जानते हैं। सृष्टि में शिव जी का प्रमुख कार्य होता है सृष्टि का विनाश करना। जब विनाश का समय आ जाता है तो शिव जी अपना तांडव नृत्य करते हैं और ऐसा भयंकर तांडव नृत्य होता है कि सारी सृष्टि हिल जाती है। अपने डमरू बजाते बजाते शिव जी नृत्य करते हैं। तो ये प्रलय काल में सृष्टि के विनाश के समय होता है। तो शिव जी का क्रोध भयंकर होता है क्योंकि ऐसे क्रोध की आवश्यकता होती है विनाश के लिए। विनाश का कार्य जो होता है वो तमोगुण का कार्य होता है, किसी चीज को नष्ट करना। तो शिव जी क्योंकि इस तमोगुण के अधिष्ठाता देव है, उनका कार्य ही है सृष्टि का विनाश करना, तो उनको भयंकर गुस्सा आ गया और उन्होंने अपना त्रिशूल लिया और त्रिशूल लेकर भृगुमुनि पे आक्रमण करके उनको मार ही डालने वाले थे कि उस समय उनके पास में बैठी हुई दुर्गा देवी ने उनको रोक लिया। श्रील प्रभुपाद कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम इस ग्रंथ में बताते हैं कि शिवजी तमोगुण से स्पर्श करते हैं अवश्य, परंतु उनकी पत्नी माया देवी या दुर्गा देवी उनमें तीनों गुणों का स्पर्श है, इसलिए वो त्रिगुणमयी प्रकृति हैं। तो दुर्गा देवी त्रिगुणमयी हैं, इसलिए सत्व रजस सब है उनके, तो वो चरण कमल में पड़ गई शिव जी की। किसी न किसी तरह से बड़े कठिनाई से शिव जी को रोक दिया, क्योंकि शिव जी भी वैसे परम वैष्णव हैं, वैष्णवानाम यथाशंभु हो, वह शिव जी जैसा कहीं वैष्णव नहीं पाया जाता। तो दुर्गा देवी चाहती थी कि शिव जी के अंदर जो दिव्यता है, जो दिव्य सात्विकता है, उसका प्राकट्य किया जाए, जिससे कि ये क्रोध रूपी अग्नि जो है इसका शमन हो जाए। तो दुर्गा देवी ने फिर प्रार्थना की अपने पति के चरणों में, तो फिर बड़े मुश्किल से शिव जी का क्रोध शांत हो गया और भृगु मुनि वहां से चले गए। ये मेरे भाई तो है, बहुत प्रिय है मेरे लिए, लेकिन ये परम सत्य नहीं हो सकते हैं। फिर कहां चले गए? श्वेत द्वीप, वैकुंठ। यद्यपि हमारे भौतिक सृष्टि के परे भगवान का वैकुंठ जगत है, फिर भी भगवान बड़ी कृपा करके हर एक ब्रह्मांड के भीतर एक वैकुंठ लोक अवश्य प्रकट करते हैं, जिसमें कि वो क्षीरुदक्षाय विष्णु के रूप में निवास करते हैं, क्षीर सागर में। इस लोक को श्वेत द्वीप कहते हैं। तो सीधे भृगु मुनि कैलाश पर्वत से श्वेत द्वीप चले गए और वहां जाकर देखा कि भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं और अपने पत्नी लक्ष्मी देवी उनके साथ में हैं। तो उनके मन में उन्होंने सोचा कि अरे, वैसे सृष्टि को संभालने का कार्य इनका है, लेकिन ये लापरवाही कर रहे हैं, ऐसे शयन कर रहे हैं, सो रहे हैं, वैसे भी परीक्षा करना चाहते थे। तो आए और एक भयंकर कार्य किया उन्होंने। ब्रह्मा जी के प्रति भृगु मुनि का अपराध मन से किया था उन्होंने, शिव जी के प्रति उनका अपराध अपनी वाणी से, वचनों से हुआ था। अब उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु की परीक्षा हम ले लें हमारे मेरे कार्यों के द्वारा एक अपराध से। तो जाके उन्होंने शिव जी के वक्षस्थल पे लात मार दी, अपने पैर शिव जी के भगवान विष्णु के वक्षस्थल में रख दिया, लात मारी। ऐसा भयंकर कार्य भृगु मुनि ने किया। तो ऐसे क्यों किया भृगु मुनि ने? वो तो ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मण को ऐसे कार्य करना तो उचित नहीं है, क्यों किया? पहली बात तो ये है कि हमारे आचार्यों ने बताया है कि भृगु मुनि इस समय जबकि ये लीला हुई वो वैष्णव नहीं थे। हमने बताया कि ऋषि मुनियों में से अनेक वर्ग होते हैं, थोड़े वैष्णव होते हैं, थोड़े नहीं होते हैं। तो जिस समय ये घटना, ये लीला हुई, उस समय भृगु मुनि एक वैष्णव नहीं थे, और इसलिए वहां उस ऋषियों के समाज में सरस्वती नदी के तट में ये सारा वाद हुआ था और भृगु मुनि खैर चुने गए थे। दूसरी बात, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी बताते हैं कि हमें जान लेना चाहिए कि ये जो भी लीला हुई भगवान की योजना के अनुसार हुई, क्योंकि भगवान स्वयं सारे दुनिया को, सारे ब्रह्मांड को सिद्ध करके दिखाना चाहते थे कि मैं ही परम सत्य हूं। तो उन्होंने इस वाद का निर्माण कराया सरस्वती नदी के तट पे बैठे हुए ऋषियों के मन में, फिर भृगु मुनि भेजे गए भगवान की योजना के द्वारा, और भृगु मुनि ने ऐसी तरकीब सोच ली, ऐसे मन से, वचन से, वाणी से, और अब तन से उन्होंने ऐसे अपराध किया। तो भगवान की लीलाएं कभी कभी ऐसे भ्रमित कराने वाली होती हैं, इसलिए हमें वैष्णव आचार्यों के टीकाओं से, उनके उपदेशों से इन लीलाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। अन्यथा भगवान की लीलाएं ऐसी होती हैं जो हमें भ्रम में डाल सकती हैं, हम समझ नहीं पाते, हैरान हो जाएंगे, अरे ऐसा क्यों हुआ। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता, श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों को अच्छी तरह से गुरु साधु शास्त्र के अनुसार सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। यदि हम केवल भगवद गीता के श्लोक पढ़ेंगे, केवल संस्कृत श्लोक पढ़ेंगे भगवद गीता के, और केवल श्रीमद् भागवत के संस्कृत श्लोक पढ़ेंगे, भले हम कितने भी बड़े विद्वान क्यों न हो, यदि हमने सही गुरु शिष्य परंपरा में इस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया हुआ हो, आचार्यों की टीका, आचार्यों की व्याख्याएं हमें यदि हम नहीं सुनी हैं, तो निश्चित ही हम इन श्लोकों को सही रूप से नहीं समझ पाएंगे। ये निश्चित बात है, केवल संभावना की बात नहीं है, निश्चित है ये। इसलिए तो भगवान ने बड़ी कृपा करके ये गुरु शिष्य परंपरा बनाई है। तो फिर जब ऐसे भृगु मुनि ने किया भयंकर कार्य, भगवान विष्णु के प्रति ऐसा अपराध कि उनके वक्षस्थल में जाके लात मारना, तो भगवान विष्णु ने क्या किया? वो तुरंत उठ के क्षमा याचना करने लगे। और केवल वो नहीं, उनके साथ में लक्ष्मी देवी भी उठी और भगवान विष्णु ने जाके हाथ जोड़ के क्षमा याचना की भृगु मुनि के सामने। कहने लगे कि आपका स्वागत हो, हमें बहुत क्षमा कर दीजिए कि हमने आपको देखा नहीं, सही तरह से आपका स्वागत हम नहीं कर पाए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब हमारा जीवन सफल हुआ। आप जैसे ब्राह्मण जब यहाँ हमारे स्थान में आते हैं तो हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है, भगवान कह रहे हैं ब्राह्मण से। अब जब आप यहाँ हमारे पास आए तो हमारा निवास स्थान पवित्र हो गया और हमारा धाम पवित्र हो गया, बल्कि सारी सृष्टि जिसमें कि अनेक देवी देवता हैं जो मेरी सेवा करते हैं, उनका जीवन भी पावन हो गया। और श्री प्रभुपाद जी कृष्ण पुरुषोत्तम ग्रंथ में यह भी कहते हैं कि इतना ही नहीं, वो उठे भगवान विष्णु और भृगु मुनि के चरणों को अपने कर कमलों में लिया और मालिश करने लगे कि मेरा वक्षस्थल कितना कठोर है, हो सकता है आपके चरणों को कोई चोट पहुंची हो। तो धीरे से मालिश करने लगे। उधर लक्ष्मी देवी भी साथ में आई थी। वैसे श्रीमद् भागवत में तो श्लोक में तो ऐसे नहीं है कि लक्ष्मी देवी कितनी क्रोधित हो गई थी वगैरह, परंतु श्रील प्रभुपाद जी अपने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम में लिखते हैं कि लक्ष्मी देवी को अच्छा नहीं लगा। स्वाभाविक है ना, कौन से पत्नी को अच्छा लगेगा जब कोई दूसरा व्यक्ति आके अपने पति के वक्षस्थल में लात मारे, अच्छा लगेगा किसी पत्नी को? तो लक्ष्मी देवी को भी अच्छा नहीं लगा। तो लक्ष्मी देवी उस दिन के बाद थोड़ी नाराज हो गई ब्राह्मणों के ऊपर। इसलिए ब्राह्मणों के ऊपर इतनी कृपा लक्ष्मी देवी नहीं करती है, इसलिए ब्राह्मण अक्सर गरीब होते हैं। सच्चे ब्राह्मण। तो खैर, जब ऐसे हुआ तो भृगु मुनि आश्चर्यचकित हो गए, हैरान हो गए कि अरे, पहले तो मैंने केवल मन से अपराध किया था, लेकिन ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, गुस्से को दबाया तो सही लेकिन गुस्सा तो हुए, फिर शिव जी तो मुझे मारने ही निकल पड़े थे जब मैंने वाणी से अपराध किया, लेकिन मैंने ऐसा अपराध किया भगवान विष्णु के प्रति, उनके वक्षस्थल में उनको सोते हुए शयन करते हुए मैंने लात मार दिया, फिर भी भगवान इनका विष्णु जी का व्यवहार तो देखो, क्रोधित नहीं हुए, उन्होंने सहन किया, क्षमा किया, क्षमा याचना मुझसे मांग रहे हैं और यहां तक मेरे चरणों को दबा रहे हैं और मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मेरी स्तुति कर रहे हैं, तो ये है श्रेष्ठ व्यक्ति। सात्विकता की मात्रा इनमें सबसे अधिक है, तीनों देवताओं में से ये श्रेष्ठ हैं। वैसे भृगु मुनि का चिन्ह, चरण चिन्ह अभी तक भगवान विष्णु के वक्षस्थल में पाया जाता है। एक गौड़ीय वैष्णवों के लिए संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है गौड़ीय वैष्णव अभिधान। अनेक वैष्णवों के बारे में यहाँ बताया गया है और वैष्णव समाज में महत्वपूर्ण चीजों की व्याख्या आदि की हुई है। तो इसमें श्रीवत्स इस शब्द के 5 अर्थ दिए हुए हैं। श्रीवत्स आपने सुना है ना? तो ये ग्रंथ हरिदास दास नाम के एक वैष्णव ने संपादन किया। तो कहते हैं कि श्रीवत्स शब्द का पहला अर्थ ये है कि भगवान विष्णु के वक्षस्थल के दाहिने भाग में एक बाल, एक हल्का सा सूक्ष्म कोमल एक बाल है। प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में कहते हैं सफेद रंग का बाल है, एक जगह आचार्यों के टीकाओं में वैष्णव तोषिणी में सनातन गोस्वामी कहते हैं ये एक हल्के से नीले रंग पीले रंग का बाल है। तो खैर जो भी हो वो एक बाल है। और ये एक जो श्रीवत्स का चिन्ह है ये केवल भगवान विष्णु के वक्षस्थल में होता है। वैकुंठ जगत में अनेक वैकुंठ लोक हैं जिनको विष्णु लोक भी कहते हैं और वहां पे भगवान के शुद्ध भक्त अनेक हैं जिनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई होती है। सारूप्य मुक्ति अर्थात ऐसी मुक्ति जिसके द्वारा भक्त को भगवान विष्णु की तरह ही एक रूप मिलता है, एक दिव्य देह प्राप्त होता है। तो यदि कोई व्यक्ति देखे भगवान विष्णु को उनके भक्तों के साथ वो समझ नहीं पाएंगे क्योंकि सब एक जैसे दिखते हैं बिल्कुल सारूप्य मुक्ति के द्वारा। लेकिन अंतर है, भगवान विष्णु के वक्षस्थल में ये श्रीवत्स है, साथ साथ उनके वक्षस्थल में ये कौस्तुभ मणि भी पाई जाती है। तो इससे हम अंतर बता सकते हैं कि भगवान विष्णु कौन है और उनके पार्षद कौन है। तो दूसरी बात, दूसरा अर्थ जो गौड़ीय वैष्णव अभिधान में है वो समझाते हैं कि ये लक्ष्मी देवी का एक चिन्ह है क्योंकि लक्ष्मी देवी निवास करती है भगवान विष्णु के वक्षस्थल पे। इसलिए श्री वत्स एक नाम है, श्री मतलब लक्ष्मी देवी, वत्स मतलब जो बहुत करीब है। तो क्योंकि श्री या लक्ष्मी देवी के भगवान बहुत करीब हैं इसलिए भगवान विष्णु का नाम हुआ है श्री वत्स। श्रीवत्स वक्षस्थल ये भी नाम है भगवान विष्णु का क्योंकि श्रीमती लक्ष्मी देवी भगवान विष्णु के वक्षस्थल में निवास करती हैं उसी स्थान में। इसमें इसलिए ये भी श्रीवत्स का दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ है कौस्तुभ मणि। यद्यपि श्रीवत्स जो बाल है और कौस्तुभ मणि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं परंतु कभी कभी कौस्तुभ मणि को भी श्रीवत्स कहते हैं, ऐसा गौड़ीय वैष्णव अभिधान में बताया गया है। चौथा है भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल में लक्ष्मी देवी का चिन्ह। आप तो जानते हैं कि लक्ष्मी देवी वृंदावन में नहीं आती हैं, वो तो वैकुंठ में रहती हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ में निवास करते हैं, लीला करते हैं। लेकिन लक्ष्मी देवी ने जब वृंदावन की लीलाओं को देखा तो उनकी बहुत तीव्र इच्छा हुई इन लीलाओं में शामिल होने की। विशेष करके वो श्री कृष्ण की रास लीला में प्रवेश करना चाहती थी परंतु उनको प्रवेश नहीं मिला क्योंकि रास लीला में केवल गोपियां शामिल हो सकती हैं। और श्रीमती लक्ष्मी देवी का दोष ये था कि वैकुंठ जगत के स्वामिनी का भाव वो त्याग नहीं कर पाए इसलिए रासलीला में प्रवेश नहीं कर पाए। फिर भी लक्ष्मी देवी अनेक वर्षों से तपस्या कर रही थी कि कब मुझे श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूलि प्राप्त होगी। कालिया के पत्नियां जो नाग पत्नियां हैं वो भी ऐसे ही प्रार्थना करती हैं कि लक्ष्मी देवी ने भी आपके चरण कमलों की प्राप्ति के लिए अनेक वर्षों तक तपस्या की, उन्हें प्राप्त नहीं हुई, तो हमारे पति जो कि एक सांप है, जो पहले बहुत पापी व्यक्ति हुए होंगे पूर्व जन्मों में, इसलिए उनको सांप का देह मिला, उनको आपके चरण धूलि कैसे प्राप्त हो गए? तो लक्ष्मी देवी भी अनेक वर्षों से तपस्या कर रही हैं, और फिर श्री कृष्ण ने उनको एक निवास स्थान दिया, क्योंकि लक्ष्मी देवी ने कहा कि आपके वक्ष स्थल में निवास करने की अनुमति आप दें, मुझे ऐसी कृपा करें मेरे ऊपर। तो इसलिए श्री कृष्ण भी उसी लक्ष्मी देवी भी श्री कृष्ण के वक्ष स्थल में निवास करती हैं। इसलिए भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का और एक नाम है श्रीनिवास, जिनके वक्ष स्थल पे श्री या लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। और पांचवा अर्थ श्रीवत्स का है कि भृगु मुनि का चरण चिन्ह। जब भृगु मुनि ने अपने चरण कमलों से, अपने चरणों से लात मार दिया भगवान में, तो विष्णु भगवान ने उस चिन्ह को पकड़ के रख लिया कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण के चरण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पूजनीय होते हैं, तो सारे दुनिया को भगवान विष्णु स्वयं दिखलाना चाहते हैं कि ब्राह्मण कितने महत्वपूर्ण होते हैं। केवल जनेऊ पहनने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता, केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता, ये हमें याद रखना है। जो गुण से ब्राह्मण है वही सच्चा ब्राह्मण है। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण है। यदि कोई ब्रह्म में है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो भगवान विष्णु स्वयं बतलाना चाहते थे कि ये कितना महत्वपूर्ण है। सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण तो वैष्णव होते हैं, इसलिए वैष्णवों की सेवा कैसे करनी चाहिए, वैष्णवों ने कोई गलती कर भी ली हमारे प्रति तो कैसे सहन करना चाहिए, हमें जानना चाहिए। कभी कभी व्यवहारिक जीवन में कोई हमें थोड़ा कुछ कह देता है तो हम उसे भूल नहीं पाते हैं, सालों साल तक याद रखते हैं। लेकिन नहीं, केवल वैष्णव समाज में नहीं, नहीं सारे दुनिया में भी यदि सहनशीलता नहीं होती, क्षमा भावना नहीं होती, तो दुनिया कब का नष्ट हो चुका हुआ होता। तो यह सहनशीलता की भावना बहुत आवश्यक है। ये सत्वगुण के लक्षण होते हैं, सहनशील होना, क्षमा करना, अन्यों में अच्छे गुण देखना, बुरे गुणों को नहीं देखना। भगवान विष्णु ने भृगु मुनि में ऐसे ही किया, के साथ ऐसे ही किया। भृगु मुनि के ओर से अवश्य भयंकर अपराध हुआ, परंतु भगवान विष्णु ने ऐसे नहीं माना कि कितना बड़ा अपराध मेरे प्रति किया है। एक बार एक भक्त हमसे बोल रहे थे, शिकायत कर रहे थे दूसरे भक्त के प्रति, और कह रहे तो उस भक्त ने मेरे प्रति बहुत बड़ा अपराध किया है ऐसे ऐसे। तो हमने कहा तुम्हें वो नहीं कहना चाहिए कि उसने तुम्हारे प्रति अपराध किया, वो दूसरे कह सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपराध कहकर नहीं मानना चाहिए। जिस तरह से जब हम अपना नाम बोलते हैं तो हमें मेरा नाम है ये और प्रभु नहीं कहना चाहिए, मेरा नाम है नंद गोपाल प्रभु, नहीं, मेरा नाम है नंद गोपाल दास, दूसरे भले हमें प्रभु कहें। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई भक्त हमारे प्रति बुरा व्यवहार करे भी, हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि उसने मेरे प्रति अपराध किया है। उसे सोचना चाहिए कि मैंने अपराध किया था, लेकिन हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। स्वयं भगवान विष्णु हमें सिखा रहे हैं। अब हमारे जीवन में कितनी बार ऐसे होता है कि कोई आके हमारे सीने पे लात मारते हैं, होता है ऐसे? ज्यादा ज्यादा नहीं होता है, कहाँ होता है। केवल अधिक से अधिक वचनों से कोई हमें कुछ कह देता है। तो भगवान विष्णु के प्रति सबसे ऊंचा जो तीव्र प्रकार का अपराध है, शारीरिक प्रहार, वो भृगु मुनि ने किया। फिर भी भगवान विष्णु ने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे प्रति अपराध हुआ, बल्कि उन्होंने तुरंत क्षमा कर दिया और सोचा कि ये मेरी गलती थी कि मैं इनका स्वागत अच्छी तरह से नहीं कर पाया। अतिथि की सेवा करना, अतिथि का स्वागत करना, ये बहुत आवश्यक होता है। वैदिक सभ्यता का एक महत्वपूर्ण अंग है ये, अतिथि देवो भवो। और मैंने अतिथि का सत्कार नहीं किया, और साथ साथ ये ब्राह्मण हैं, इन्होंने ये नहीं सोचा कि ब्राह्मण जैसा कार्य इन्होंने नहीं किया। ये नहीं सोचा विष्णु भगवान ने कि ब्राह्मण को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। नहीं, ये तो ब्राह्मण है और मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे यहाँ आए हैं, मेरे स्थान को पवित्र कर दिया, मेरे शरीर को पवित्र कर दिया, तो इनके चरण चिन्हों को मुझे रखना चाहिए ताकि सभी लोग समझ लें कि ब्राह्मणों का स्थान कहाँ है, कितना महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो मैं यदि ब्राह्मणों का सम्मान इस तरह से करता हूं तो दुनिया के लोगों को और कितना करना चाहिए, तो ये बात भी हमें समझ लेनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि भगवान विष्णु भृगु मुनि की अच्छाई को देखने लगे, बुराई को नहीं। तो ऐसे हमारे दैनिक व्यवहार में अनेक अनुभव होंगे, घटनाएं होंगी। तो भगवान आदर्श गुरु हैं, अपने उदाहरण से सिखलाते हैं हमें कि कैसे दुनिया में हमें रहना चाहिए, कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए। भृगु मुनि ने जब ये व्यवहार देखा वो भाव विभोर हो गए, उनकी आंखें आंसू से भर गई और वो कुछ उत्तर नहीं दे पाए, बिल्कुल निरुत्तर रह गए कि ऐसा व्यवहार उन्होंने उनके द्वारा अपेक्षित नहीं था। भृगु मुनि ने सोचा कि ये तो और भी गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बिल्कुल भाव विभोर अवस्था में वो शांति से अपना सर झुका के वो चले गए और सरस्वती नदी के तट में फिर से आए और अपना अनुभव सारे ऋषि मुनियों को बता दिया कि मेरा निष्कर्ष ये है। और सारे ऋषि मुनि जो हैं उन्होंने बातें सुन ली, वो बहुत प्रभावित हो गए और सबके मन में ये निष्ठा हो गई कि भगवान विष्णु या कृष्ण ही परम हैं। और सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि फिर वो सारे कृष्ण भक्त बन गए और भगवान विष्णु के वैकुंठ जगत को प्राप्त हो गए। वैसे इन साधुओं के समाज में तीन प्रकार के लोगों का वर्णन है। एक है जो मुनि है, दूसरे हैं जो शांत हैं, और तीसरे हैं जो साधु हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि मुनि वो हैं जो मुक्ति पाना चाहते हैं, शांत वो हैं जो मुनि मुक्ति प्राप्त कर चुके हैं, और साधु वो हैं जो वैष्णव हैं। तीनों प्रकार के लोग थे, लेकिन अब इस अनुभव को सुन के, इस लीला के बारे में सुन के सभी लोग वैष्णव बन गए। इसलिए भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनना भक्तों के बीच में आके ये कितना महत्वपूर्ण है हम सब के लिए। जब पहली बार लोग मंदिर में आते हैं वो वैष्णव सिद्धांत को, गीता भागवत के ज्ञान को अच्छी तरह से नहीं जानते, उनके मन में भी ऐसे अलग अलग धारणाएं होती हैं। लेकिन जब श्रीमद् भागवत से कथा सुनते हैं तो उनके मन में जो भी संशय हैं वो मिट जाते हैं और स्पष्ट ज्ञान स्थित हो जाता है। उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं और इन्हीं की भक्ति हमें करनी चाहिए, और इस तरह से वो भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा से ये सारे ग्रंथ हमारे लिए उपलब्ध हैं, इन सबको हमें रोज पढ़ना चाहिए, मंदिर में आके भक्तों के संग में सुनना चाहिए, इनका पाठ करना चाहिए और पवित्र भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो एक प्रश्न के लिए ही समय है, काफी समय हो गया। एक प्रश्न है किसी का? शिव जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो जन्म के बाद भृगु मुनि शिव जी को मिलने क्यों गए थे? क्योंकि ये तीन ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु जी सबसे प्रमुख देव है ना इस ब्रह्मांड के, जैसे हम प्रवचन के पहले बता रहे थे। तो ऋषि मुनियों को यह संशय था कि इन तीनों में से परम कौन है, तो इसका स्पष्टीकरण करने के लिए वो तीनों के पास गए। वैकुंठ में वैष्णव को प्रवेश है, तो भृगु मुनि कैसे वैकुंठ में प्रवेश कर पाए? हाँ, जो इस भौतिक जगत के परे जो वैकुंठ है, वहां पे केवल वैष्णवों के लिए प्रवेश है, लेकिन यहां इस भौतिक ब्रह्मांड के भीतर जो श्वेत द्वीप है, वहां भी कभी कभी ऐसे मुनियों को प्रवेश हो जाता है। और वैसे भी जैसे हम पहले बता रहे थे कि आचार्यों ने बताया है कि ये सब भगवान की योजना से हुआ। यदि भृगु मुनि को प्रवेश नहीं मिला होता श्वेत द्वीप में, तो ये लीला नहीं हुई होती और ये स्पष्ट ज्ञान सारे ब्रह्मांड के लिए नहीं मिल पाता कि भगवान विष्णु या कृष्ण ही परम है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।